ओम शांति। निजार भाई ने अपना प्रैक्टिकल अनुभव, हमारा बहुत सालों से उनके साथ पुराना नाता है, क्योंकि जो भी भाई बहने फॉरेन से आते हैं अबू के लिए, वो पहले हमारे पास विले पार्ले में आते हैं और वहां से ही फिर आगे जाना सबका होता है। तो काफी सालों से और उनके साथ हम लोगों ने काफी सेवाएं भी की है। फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम भी मुंबई में किया हुआ है उनके साथ, और बहुत अच्छे हमारे स्पीकर भी है, सेवाधारी भी है, और जितनी महानता उतनी नम्रता उनके अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से उनका बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन बिजी होते हुए भी हमेशा इजी रहते हैं, ये उनसे सीखना होता है, सदा इजी। हमें तो आज बहुत ही खुशी है कि पूरे भारतवर्ष से आप सब व्यापारी और उद्योगपति पधारे हो। आप व्यापारी, आपकी अपनी विशेषताएं और योग्यताएं होती है। मैं हमेशा कहती हूं कि आप देश की निधि, ट्रेजरर के समान हो। आप जब बिजनेस करते हो तो ये बरोबर बात है कि आपको हर बात में रिस्क लेना पड़ता है, पहल करनी पड़ती है, दृढ़ताएं बनानी रखनी पड़ती है। कभी कभी निर्णय जो है वो तुरंत लेना पड़ता है, राइट टाइम पर राइट निर्णय लेना। और आप सब हमारे देश की भी समृद्धि, जो आज का विषय है हमारा, कि आध्यात्मिकता से कैसे उद्योग और व्यापार में हम समृद्धि को ला सकते हैं, तो आप हमारे देश की समृद्धि बढ़ाने वाले हो। मैं तो यही कहेंगी कि परमात्मा शक्ति, परमात्मा जो है वो अनंत शक्तियों के, उनके पास सर्वशक्तिमान है, भरपूर है। सर्वशक्तिमान की शक्ति, शक्तियों के हम कहते हैं दाता है, गीत में गाते हैं ना, इतनी शक्ति देना हमें दाता। तो आप देखो हर वस्तु में अपनी अपनी शक्तियां होती है। जैसे पानी के अंदर शीतलता की शक्ति है, पृथ्वी के अंदर सहन करने की शक्ति है, इसी तरह से इस जगत के पिता जो परम आत्मा है, उनकी दिव्य और सूक्ष्म शक्तियों का प्रकाश जब विश्व में फैल जाता है तो हमारे जीवन का भी परिवर्तन हो जाता है। आज देखो हरेक आत्मा की, हरेक की इच्छा क्या होती है, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, और दुख अशांति की क्या हो, निवृत्ति हो। परंतु हम देखते हैं आज कि एक समस्या को हल करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को हल करो तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और बिजनेस और इंडस्ट्री भी उसमें अपवाद नहीं है। आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि बिजनेस लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि व्यक्ति को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है, परिवार के लिए भी सोचने का टाइम नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं मिलता है और जिसकी जीवन में आवश्यकता है वो है आध्यात्मिकता, वो भी वो कर नहीं पाते हैं। आज आप देखिए कि इस भौतिकता के युग में आज हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, एयर कंडीशन का प्रबंध कर लेते हैं, हमें ठंडी लगती है हम हीटर का प्रबंध कर लेते हैं, परंतु यदि किसी को गुस्सा आ जाता है तो उसको ठंडा करने की शक्ति उस भौतिकता के पास है? है? वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति जो है वो आध्यात्मिकता के पास है। आपने नाम सुना होगा कि आदि के जो शंकराचार्य जी थे उनको बहुत छोटी उम्र में संन्यास लेना था, तो उनकी लौकिक मां ने उनको कहा कि इतनी छोटी उम्र में मैं आपको संन्यास नहीं लेने दूंगी। तो उन्होंने क्या युक्ति किया कि अपना जो पैर है वो मगरमच्छ के क्रोकोडाइल के मुंह में डाल दिया और बोला कि आप मेरे को छुट्टी दो नहीं तो ये मगर मेरे को खा जाएगा। तो उसकी मां ने सोचा कि मुझे उनका मुंह तो देखने को मिलेगा, मैं उसको छुट्टी देती हूं। और उसने कहा ठीक है मैं आपको छुट्टी तो देती हूं परंतु मेरी एक शर्त है कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो आपकी ही कांध पे जाएगी। वैसे सन्यासी वापस नहीं आते हैं पर इन्होंने ये शर्त रखी। उस समय वो हजारों मील दूर थे परंतु पहुंच गए। आप सोचो उस समय टेलीग्राम था, टेलीफोन था, इंटरनेट था, ईमेल था, फैक्स था, कुछ भी था, व्हाट्सएप था, लेकिन वो पहुंच गए। तो वो कौन सी शक्ति ने काम किया? वो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति ने ये काम किया। आज आप देखिए कि आप बिजनेस करते हो, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, कभी कभी तकलीफ कोई बात की चैलेंजेस आ जाती है, तो उस समय मैं कईयों का अनुभव सुनती हूं कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हर एक को यहां अनुभव है कि नहीं है कि यहां कोई नहीं करते? होता है, होता है, हाँ कहते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि एक बड़ा बिजनेसमैन था और उनके पास सब कुछ था, समृद्ध था, परंतु फिर भी वो टेंशन करता ही रहता था। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि आप क्यों इतना टेंशन करते रहते हो, आपको तो लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आपके पास इतना करोड़ों रुपया है, आप ऐसे तो दुनिया में समृद्ध लोग बहुत कम होते हैं, उसमें आपका नाम है, फिर भी क्यों? तो उसने कहा कि मुझे हमेशा भविष्य की चिंता रहती है कि आज तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कल बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे घाटा पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। वो सोचता ही रहता था कि मैं फैमिली का भरण पोषण फिर कैसे करूंगा, ऐसी ऐसी बातें करके वो टेंशन में रहता था। एक दिन वो ऑफिस से आए तो उसकी वाइफ भी बेड पर सोई हुई थी, खाना कुछ बनाया नहीं उसने, तो कहा क्या हो गया तेरे को, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोला नहीं मेरे को भी आज दोपहर से मैं सोचने ही लगी हूं कि यदि सर्वेंट नहीं आएगा तो इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा, बच्चे पढ़ते नहीं है, एडमिशन नहीं मिलेगा, जो भी बहुत सी बातें उसने बता दिया कि ये बातों के कारण भविष्य की मेरे को टेंशन में मैं सोचने में ही लगी हूं। तो वो उसको कहने लगा कि तुम भविष्य की बात जो है वो तू अभी से क्यों सोचती है, तो कहने लगे आप भी तो वही करते हो ना। उसने उसको जवाब दिया, तो वो बिजनेसमैन समझ गया और उसने फिर टेंशन करना जो है वो छोड़ दिया। तो हमारी जो इस विद्यालय की और अपने बिजनेस विंग की चेयरमैन दादी हृदय मोहिनी जी है, अभी मुंबई में है, वो हमेशा हमें सिखाती है कि टेंशन नहीं करना है परंतु आगे ए लगा दो तो क्या हो जाता है, अटेंशन जरूर रखना है परंतु टेंशन नहीं करना है। दादी हमेशा कहती है जो हो गया वो कल्याणकारी, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी और जो होगा वो भी कल्याणकारी, सब बात में सब अच्छाई, सब बात में कल्याण समाया हुआ है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार अकबर और बिरबल थे, शिकार पर जा रहे थे, तो अकबर ने चलते चलते देखा, बात करते करते उसकी एक अंगुली कट गई, तो शिकार पर जा रहे थे तो बिरबल ने बोल दिया कि जो हुआ वो कल्याणकारी है, तो उसको गुस्सा आ गया, बोला एक तो मेरी अंगुली कट गई है और ये कहता है जो हुआ वो कल्याणकारी है, तो उसको जेल में ही डाल दिया गुस्सा करके। फिर वो अकेला गया तो ट्राइबल एरिया के आदिवासी लोग बैठे थे, उन्होंने उसको कहा आप उतरो, हमने नक्की किया है जो पहले आएगा उसकी आज हम बलि चढ़ाने वाले हैं। तो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि इसकी तो एक अंगुली कटी हुई है, तो बोला कि आपकी बलि नहीं चढ़ सकती है, आप वापस जाओ। तो वो आया महल में, पैलेस में, तो उसने पहले तो बिरबल को छोड़ा और उसको कहा कि भाई तूने जो बोला कि जो होता है वो कल्याणकारी, ये तेरी बात सच है, क्योंकि नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाने वाली थी। तो बिरबल ने कहा आपने मेरे को गुस्सा करके जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती थी। तो ये क्या हुआ, तो हमारे लिए जो भी होता है वो कल्याणकारी है। देखो हमें बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, प्रॉफिट करना हमारा स्वाभाविक है, परंतु ये तीन प्रकार का धन कमाना होता है। धन और लाभ तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है उसका कि जब आप करते हो तो आप दूसरे को फायदा हो, उसको घाटा ना हो और आपको भी लाभ हो, ऐसा जो धन है वो दूध के समान है। दूसरा जो प्रकार है कि बिजनेस की जो रीति नीति है वो ठीक है, परंतु लेन देन में न चाहते हुए भी व्यवहार का जो स्तर है वो कम हो जाता है, मूल्यों की कमी हो जाती है। ऐसा धन पानी मिश्रित दूध के बरोबर है, तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी उतने ही परसेंटेज में मिलती है। और तीसरा जो है वो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि इसने मेरे को धोखा दे दिया है, ऐसा जो धन है जिसको हम कहेंगे ये सात्विक नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्तर से पुरुषार्थ जो है वो करना चाहिए, आध्यात्मिकता जो है उनको साथ लेना चाहिए। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको तीन बातों की जरूरत पड़ती है। कौन सी पड़ती है, एक आपको तीन पावर कहेंगी, तीन पावर की जरूरत पड़ती है। एक पहला पावर है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मनी पावर चाहिए और तीसरा मेन पावर चाहिए। तीन पावर चाहिए, जब बिजनेस इंडस्ट्री चलाते हैं तो ये चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा तो क्या होगा, मशीनरी नहीं ले सकेंगे, चलेगी नहीं, कैसे होगा, तो बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं होगा उसके बिगर। दूसरा मनी पावर जरूरी है, क्योंकि आपको एम्प्लॉई को पे देना है, मशीनरी खरीदनी है, जो जो भी करना है। और तीसरा मेन पावर, अच्छे मैनेजर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो अच्छा काम करे। तो ये तीन पावर तो है, लेकिन इस तीन पावर के अलावा एक चौथा भी पावर है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चौथा पावर, जिसको हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति से ही हम अपने अंदर आंतरिक शक्ति जिसको कहते हैं, उस आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। पहली जो आंतरिक शक्ति है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप बिजनेस में कितना भी फैलावा करो, परंतु समय पर हमें क्या करना है, उनको समेट लेना है। ऐसे नहीं कि ऑफिस का टेंशन घर में लेके आओ, बैलेंस करना है। जैसे कछुआ होता है, वो क्या करता है, अपनी सब कर्मेंद्रियों को फैलाता है, जब कार्य पूरा होता है तो उनको क्या करता है, वो समेट लेता है। इसलिए विस्तार करो, पर विस्तार को संकीर्ण करने की जो शक्ति है वो आध्यात्मिकता से, वो योग से हमारे अंदर आती है। ऐसी दूसरी शक्ति है जिसको हम कहते हैं समेटने की शक्ति। आज हम बोलने में क्या बोलते हैं, अरे अकेले आए अकेले जाना, ये दुनिया तो मुसाफर खाना है। हम कहते हैं ना कि सिकंदर जैसा सिकंदर सारी दुनिया जीतनी थी, पर जब गया तो उसने बोला था कि मेरा हाथ ऊपर रखना, भाई लोगों को ये पता पड़े कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो हमको अपने आप को एक निमित्त ट्रस्टीशिप, जिसको हम कहते हैं निमित्त भाव से चलना। हमारे जो चीफ प्रकाशमणि दादी थे, तो उनको सारे एक बार जर्नलिस्ट ने पूछा कि दादी आप इतना बड़ा चलाते हो, आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कभी मैं ये समझती नहीं हूं कि मैं चलाती हूं, करण करावनहार वो परमात्मा है और मैं एक निमित्त आत्मा हूं। तो जब निमित्तता का भाव होता है, ट्रस्टीशिप की भावना होती है, तो सदा कोई टेंशन नहीं रहता है और एवर रेडी रहते हैं। इसी तरह से सहन करने की शक्ति, जिसकी हमें जीवन में बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे पास सब आते हैं तो कहते हैं बेन जी हमने 9 बार तो कंट्रोल किया, पर 10वीं बार तो हमारे से गुस्सा हो ही गया। तो इसका अर्थ सहन करने की शक्ति जो है वो नहीं है। आप देखो पानी को आप कितना भी गर्म करो, परंतु पानी का ओरिजिनल स्वभाव क्या है, शीतलता है ना। तो उसी तरह से आज किसी को कितना भी, कोई 24 घंटा तो चिल्ला नहीं सकता है ना, गुस्सा आएगा तो कितना आएगा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, इससे ज्यादा कोई जोर जोर से चिल्ला सकता है, बोल सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो ओरिजिनल में क्या हूं, ओरिजिनल मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति जो है वो ही मेरा स्वधर्म है। आप देखिए कि सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण भी है। आज एक भाई भाई भी एक थोड़ी सी सहन करने की शक्ति न होने के कारण क्या हो जाता है, एक मालिक और एम्प्लॉई होगा तो रिलेशनशिप जो है वो एक मिनट में खराब हो जाती है। हमारे पास एक दादी जो चेयरमैन है बिजनेस विंग की, तो दिल्ली में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोर्स किया, फिर उसने अपने सारे वर्करों को सेंटर पर भेजा कि आप लोग भी ये सीखो। जब सबने 7 दिन का कोर्स कर लिया तो दादी उसको मिले, तो दादी ने कहा कि अभी आप लोगों ने ये किया है लेकिन रोज प्रैक्टिस करना और आप लोग आते रहना आना। तो कहा कि हाँ दादी हम लोग तो आएंगे, लेकिन आप हमारे बॉस को भी बोलो कि वो भी आए। तो दादी ने कहा कि आप उसके लिए क्यों बोलते हो, आप अपना करो, आप लोग आओ। तो कि नहीं दादी, पहले वो जब राउंड लगाने आते थे तो हम लोगों को लगता था कि कोई काल आ गया है, बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन यहां आने के बाद, ये राजयोग सीखने के बाद, अभी वो राउंड लगाने आते हैं तो हमको लगता है जैसे हमारा बाप आया है। तो कितना चेंज हो गया देखो। तो कहने का है कि ये एक ऐसी शक्ति है सहन करने की जो योग से हमारे अंदर आती है। हमारी जानकी दादी कल आने वाली है, आप सबको मिलेंगे दादी। तो दादी ने ये सिखाया कि ये भावना रखो, कौन सी रखो, फॉरगेट एंड फॉरगिव, हमेशा ये कहती है। देखो कभी क्रोध आ जाता है, कभी ईगो प्रॉब्लम भी बहुत आ जाता है, होता है ना बात बात में। एक मैं कई बार सुनाती हूँ कि एक दो गाड़ी हमारे पास मुंबई में ये बहुत होता है, आमने सामने गाड़ी आ जाती है, तो दोनों बैठे थे, वो कहे तू ले रिवर्स, वो कहे तू ले, दो में से एक भी नहीं ले रहा था। नहीं ले रहा था तो थोड़ी देर, एक पुलिया जैसा था, ब्रिज छोटा सा था, तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और वहां जाके बैठ गया वो, और पेपर पढ़ने लगा आराम से। थोड़ी देर हुई तो दूसरा ने दरवाजा खोला और आया, तो इसको लगा अभी ये समझौता करने आ रहा है और मैं तो बोलने वाला हूं कि तू तेरी गाड़ी ही रिवर्स करना। तो वो आया उनके पास, बोला तू ये पेपर पढ़ रहा है ना, पढ़ने के बाद मेरे को पेपर पढ़ने देना। तो उसके लिए दादी हमें समझाती है कि देखो ये ईगो प्रॉब्लम, क्रोध, तो फॉरगेट अने फॉरगिव, क्षमापना की भावना रखो। क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्षमा एक बहुत बड़ा स्वतंत्र ये मूल्य है। आप जब यहां से ये कॉन्फ्रेंस करके जाएंगे तो एक बात जरूर लेके जाओ कि यदि मेरे को कोई गुस्सा करेगा मेरे ऊपर तो मैं उसको क्षमा करूंगी, यदि मेरे से हो गया तो मैं क्षमा मांगूंगी, और कोई मेरे से क्षमा मांगेगा तो मैं उसको क्षमा दूंगी। तो ये शक्ति के साथ साथ आती है समाने की शक्ति। आज हमारे जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा, हमें ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता है, कोई न कोई गुण है, कोई न कोई विशेषता है। यदि उसके अंदर 99 अवगुण हो ना, तो भी आप उसकी एक विशेषता को देखो और उसको कार्य में लगाओ। आज समुद्र जैसे अपना कचरा हर एक अंदर समा लेता है, पर बाहर क्या निकालता है, वो रत्न निकालता है ना। तो हमेशा हमको हर एक की विशेषताओं को देखना है। राय का पर्वत नहीं, परंतु क्या करना है, पर्वत की राय करना है। उसी तरह से परखने की और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, पावर टू जज। सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए ये दो शक्ति की आवश्यकता है। आप सामने वाले व्यक्ति को परख सकते हो, बिजनेस करना है साथ में, आपको पता पड़ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, कभी हमें धोखा तो नहीं देगा। परख शक्ति से आप तुरंत समझ जाएंगे। और निर्णय शक्ति, कई बार कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, कोई 8 दिन लगाएगा, कोई 15 दिन, कोई 1 मास, निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो निर्णय शक्ति की भी जरूरी है। ये दोनों शक्ति सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए हमें जरूरी है। उसी तरह से सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। देखो बिजनेस में चैलेंजेस तो हमेशा आती है, और चैलेंजेस जब आती है तब क्या करना होता है। कोई भी चैलेंजेस, हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा नहीं कि जिसको कभी जीवन में चैलेंजेस आई ही नहीं हो, और ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं होंगी कि जिसका हमने सॉल्यूशन नहीं किया हो। सॉल्यूशन हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। मन अपना जो है वो कमजोर होता है तो परिस्थिति तो क्या हो जाता है, चैलेंजेस क्या हो जाता है, हमारे सामने एक समस्या रूप बन जाता है। मन जब स्थिर होता है तो परिस्थितियां चैलेंजेस बन जाती है, और मन जब मजबूत होता है तो चैलेंजेस जो है वो क्या हो जाती है, चुनौतियां एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा उसका एक एग्जाम्पल है। जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो बहुत लोगों ने ऑपोजिशन किया, क्योंकि उन्होंने को जब विजन हुआ तो उन्होंने कन्याओं और माताओं को निमित्त बनाया। कारण यही था कि जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम से संस्कारों का सिंचन करती है, तो ये माता है जिसको भी जो हैबिट है जीवन में परिवर्तन प्रेम से करा सके, यही भावना से निमित्त बनाया। लेकिन लोगों ने उस समय बहुत ही ऑपोजिशन किया, लेकिन पिताश्री ने एक बात को दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से रखा कि सत्य की नाव जो है वो हिलेगी, डोलेगी, परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। तो इस सत्यता की शक्ति से उन्होंने शुरुआत की। उनका एक संकल्प ही हुआ कि मुझे विजन हुआ कि मुझे स्वर्णिम सृष्टि बनानी है, स्व परिवर्तन से मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। तो आज आप देखिए कि हजारों सेंटर है, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहां सेंटर नहीं हो। परमात्मा का ये कार्य है और ये सेवा है वो और भी ज्यादा से ज्यादा चल रही है। तो ये कैसे देखो चैलेंजेस, और कैसे उनको अपॉर्चुनिटी, एक उनके लिए ये अवसर बन गया जो इतना कार्य हो रहा है। तो ये सामना करने की शक्ति, उसी तरह से संगठन की शक्ति। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, एक टेबल मेरे को ये उठाना है तो भी मैं कहेगी जरा हेल्प करो, कोई भी कार्य करना है तो टीम स्पिरिट चाहिए। टीम स्पिरिट बिगर कर सकेंगे? तो ये संगठन की शक्ति जो है वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसी तरह से सत्यता की शक्ति, आज जो एक भाई ने, गिरीश भाई ने सारा इनके ऊपर ही हुआ ना सारा बताया, ये बहुत जरूरी है हमारे पास। ये जैसे आज कॉन्फ्रेंस है, वैसे बहुत पहले जस्टिस कृष्ण अय्यर जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो आए थे ये कॉन्फ्रेंस में बिजनेस विंग की। एक बहुत अच्छा उसने एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे सुनाए। उन्होंने कहा कि एक बार इलेक्शन हो रही थी तो एक पार्टी ने स्लम एरिया में गई और सबको 1000 रुपया दिया कि आप मेरी ही पार्टी को वोट देना। फिर दूसरे दिन दूसरी पार्टी वाले वही एरिया में गए और 500 रुपया दिया और बोला कि आप हमारी पार्टी को वोटिंग करना, ठीक है। फिर एक ने पूछा कि तेरे को एक ने 500 रुपया दिया, एक पार्टी ने 1000 रुपया दिया, तूने आखिर वोटिंग किसको किया? तो बोला मैंने तो 500 रुपया वाले को किया। बोला क्यों, 1000 रुपया ज्यादा है? बोला नहीं, पर ये 500 वाला कम करप्टेड हुआ ना। तो भले है पर तो भी तो सत्यता की शक्ति जो है बहुत अच्छा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ऐसा ही दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल में बिजनेसमैन बनना था, तो दो बच्चे जा रहे थे एग्जाम देने, तो कोई भी बात से उन लोग को लेट पहुंचे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेट पहुंचे। तो प्रोफेसर ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो दोनों अलग अलग रूम में बैठ जाओ। फिर वो लोगों को पूछा कि पर आप लेट क्यों पहुंचे? तो इन्होंने कहा हमारी गाड़ी का है ना पंक्चर हो गया, इसलिए हम लोग लेट पड़ गए हैं। तो बोला ठीक है। फिर दोनों को अलग रूम में बिठाया, एक को पूछा कि बताओ कौन सी साइड गाड़ी का, कौन सी साइड का टायर का पंक्चर हुआ? तो उसने बोला राइट साइड का। फिर दूसरे को पूछा कौन सी साइड की गाड़ी का पंक्चर हुआ, उसने बोला लेफ्ट साइड का। तो वो समझ गए कि ये झूठ बोले। तो बोला कि देखो ये सत्यता चाहिए, आपको तो आगे चल के बड़ा बिजनेसमैन होना है, आगे बढ़ना है, तो आप ये शक्ति जो है वो आपको जीवन में जरूरी है, सत्यता की शक्ति। जैसे हम आज सुबह भी वो भाई ने बताया ना कि सत्यता की शक्ति से गांधी जी ने हमको पूरा स्वराज्य दिलाया। हमारे पास एक कवि प्रदीप जी सब जानते हैं, नेशनल पोएट थे, वो हमारे पास रेगुलर शाम को आते थे। तो एक बार मेरे को रोज शाम को बैठते थे और बहुत अच्छा हमारे काफी गीत जो आप सुनते हो यहाँ वो उन्होंने लिख के हमको दिए। तो एक बार मेरे को उसने पूछा कि तेरे को पता है मैंने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल गीत लिखा था, तो क्यों लिखा, कि कमाल कर दिया मैंने क्यों लिखा? तो मैंने कहा कि मेरे को नहीं पता है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गांधी जी ने बिगर खड़ग पी, तलवार बिगर आजादी दिलाई, इसलिए मैंने ये गीत लिखा। तो मैंने कहा, हमारा जनवरी मास उस समय चल रहा था जब वो आए, तो मैंने कहा हमारे पिताश्री का भी 18 जनवरी पर स्मृति दिन आता है, तो आप उन्होंने ये कार्य किया, आप मेरे को गीत लिख के दीजिए ना। उसने तुरंत मेरे को लिख दिया कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया, माला माल कर दिया, हमें बेमिसाल कर दिया। तुरंत ही उन्होंने अच्छी तरह से लिख के दे दिया। तो कहने की बात यह है कि ये सारी शक्तियां हैं, सत्य, अहिंसा, आज परिवर्तन शक्ति। देखो परिवर्तन शक्ति, चेंज, ये बहुत जरूरी है। आप सब यहां क्यों आए? अच्छा है ना, ये एक बहुत आप अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि परिवर्तन शक्ति के साथ महसूस करने की शक्ति, पावर टू रियलाइजेशन, जब हमको महसूस करने की शक्ति आ जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। उसी तरह से दृढ़ता की शक्ति, हम कहते हैं डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस, दृढ़ता जो है वो सफलता की चाबी है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करना, समृद्धि के लाने के लिए दृढ़ता की शक्ति जीवन में जरूरी है। और साथ साथ में, टाइम तो होता जा रहा है, मैं यही कहेंगी कि ये सब शक्तियां का अनुभव हम प्रैक्टिकल में, यहाँ आपको हमारी बहनें सुबह को शिविर कराते हैं, उसमें भी आपको ये लेसन जरूर डिटेल में वो देंगी। और हम कहेंगी कि उद्योग में, उस दिन भी बताया कि उद्योग के अंदर योग शब्द समाया हुआ है और योग बिगर उद्योग अधूराई है। तो जब हम इंडस्ट्री कहते हैं तो मैं हमेशा कहती हूं कि आई उसमें आता है फॉर इंट्रोवर्डनेस, अंतर्मुखता जिसको हम कहते हैं, वो जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतर्मुखता जब आती है तो हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। जब एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है तो कार्य करने की जो कार्यक्षमता है हमारी वो बढ़ जाती है। जब कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ जाता है, और उत्पादन बढ़ जाता है तो आपको भी फायदा, देश को भी फायदा, सबको फायदा होता है। एन फॉर नोबल बिहेवियर, हमें हमेशा सबसे उत्तम व्यवहार जो है वो करना है। डी फॉर डिविनिटी, जो जैसे ये इंट्रोवर्डनेस एक बहुत बड़ा गुण है, जैसे सहनशीलता बताया, धैर्यता, जीवन में पेशेंस चाहिए, हर्षित मुक्ता, हमारे दादी जी कहते हैं कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। हम मुंबई में एक हॉस्पिटल चलाते हैं तो वहां देखते हैं पेशेंट को राउंड लगाते हैं तो कई पेशेंट कोमा में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे बेचारा जिंदा तो है पर कोमा में पड़ा हुआ है। इसी तरह से खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है। इसलिए हमारी गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी कहती है कि शरीर छूटे तब तक हमें अपनी खुशी को जो है वो मेंटेन करना है, ये जरूरी है। तो ये सारे दिव्य गुण है, डिविनिटी। यू फॉर यूनिटी, संगठन। एस फॉर सेटिस्फेक्शन, जीवन में हमें सदा संतुष्टता चाहिए। हमारे प्रकाशमणि दादी भी कहते थे कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता जो है वो उसकी पहचान है। तो ये जरूरी है। टी फॉर ट्रस्टीशिप और आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कार्य करे, देखो कर्तव्य और अधिकार दोनों का बैलेंस चाहिए, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसको राइट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दो तो काम कैसे करेगा? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उसको राइट नहीं दो तो भी वो काम कैसे करेगा? तो कर्तव्य और अधिकार दोनों का जो है वो बैलेंस बहुत ही जरूरी है। वो थोड़े दिन पहले उसके लिए मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसको कई बिजनेस थे, उसमें वो बिल्डिंग भी बना रहा था, बिल्डर भी था। तो उसके पास एक सुपरवाइजर था, वो बहुत उसका अच्छी तरह काम करता था, उससे वो बहुत खुश रहता था कि ये सुपरवाइजर मेरा बहुत मेरे को अच्छा काम देता है और वफादारी से करता है। फिर क्या हो गया कि उसने सुपरवाइजर ने उसको बोला कि अभी मेरा एज हो गया, मेरे को निवृत्ति लेनी है। तो उसने कहा नहीं, तू भले मेरे पास काम कर, नहीं लेगा तो चलेगा, लेकिन उसको लेनी थी। तो उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे अभी कमाने लगे हैं और मेरे को तो लेना है। तो बोला एक काम कर तू, कि जाने से पहले तू एक मेरे को छोटा सा बंगला बना के दे। तो वो जगह छोटी सी उसको दिया और बोला कि तू कर। उसको करना नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा तो फिर उसने कहा ठीक है करके देता हूं। पर उसने दिल से काम नहीं किया, बनाने लगा जल्दी जल्दी, इतना थोड़ा केयरलेस भी रहा बनाने में। जब बन गया पूरा तो उसने उसके बुलाया ये बॉस को और बोला कि ये बन गया है। तो वो उसने देखा जब, तो उसको जरा भी अच्छा नहीं लगा कि ये उसने बरोबर नहीं बनाया है। तो वो बाहर चला गया, फिर इसने ताला मार के उसको चाबी दिया कि ये हो गया है, अभी मैं चाबी आपको दे देता हूं। उसने बोला, उसने उसको ही चाबी वापस दिया, बोला ये बंगला मैंने तेरे लिए बनवाया था। तो वो फिर उसको बॉस को भी माना, उनको भी देखते रहे, बिजनेसमैन को भी देखता रहे वो, और ताला मारा लगाया हुआ था उनको देखता रहे। उसने खुद को, उसको बहुत खराब लगा कि ये तो मैंने खुद ने मेरे ही उस पे वो किया और मैंने ये बेदरकारी रखा, ये अच्छा मैंने नहीं किया। उसको ये रियलाइज हो गया। तो देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम करे हम दिल से करे, जो भी यहां हमको यही सिखाया जाता है, योगः कर्मशु कौशलम, जो काम करो आप परफेक्ट करो, याद में करो। तो हम कहेगी ये, और लास्ट में वाई फोरा फॉर योगा। तो अभी 7:15 बजा है, हम लोग सब, हम हमेशा कहते हैं कि सर्व सोसाइटी थ्रू इंडस्ट्री और सर्व इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिकता, योग एक शक्ति है जिससे हमारे अंदर और भी शक्तियां आ जाती है। तो थोड़े समय के लिए हम उस योग शक्ति का अनुभव करेंगे, 10 मिनट हम सब योग में बैठेंगे। ओम शांति,
ओम शांति।